संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। ये समय सार परमागम की 13वीं गाथा आरंभ करनी है, उसकी उत्थानिका के कलश चल रहे। हमें चंद्राचार्य देव ने कई गाथाओं का तो गद्य में उत्थानिका लिखी है और कई गाथाओं की पद्य में उत्थानिका लिखी है, तो ये उत्थानिका के ही कलश है। कल अपन ने छठवें कलश के माध्यम से ये कहा था मूल बात कि मुझे नौ तत्व की संतति वाला सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, मुझे तो एक आत्मा की स्थिति वाला सम्यक दर्शन ही चाहिए। तो इसमें ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन दो प्रकार के होते हैं और एक नकली एक असली है ना, होता बाजार में मिलता है ना, तो कोई आदमी उसको नकली टका रहा हो तो कहते हैं मुझे तो ये नहीं चाहिए, असली माल चाहिए। लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है, सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का होता है और उसको कथन अनेक प्रकार से किया जाता है, जैसे अनुक्षम सम्यक दर्शन, छेक्षम सम्यक दर्शन, सहायक सम्यक दर्शन, ऐसे भेज देना बहुत, तो क्या वो अनेक प्रकार का हो गया? ऐसे ही ये भेद है निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का होता है और वो है जो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जो पूज्य गुरुदेव श्री की इस दुनिया में सबसे बड़ी देन यदि कोई मानी जाए कभी है, तो आचार्यों की बात, भगवान महावीर की बात, लेकिन जगत के समस्त डंके की चोट पर जैसे उन्होंने प्रस्तुत किया और सारे देश में उस वक्त इसकी चर्चा नहीं होती थी। उसका नाम उत्तरकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है। तो वो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जिसमें कल भी अपन ने बात की थी, उसमें अपनापन, उसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन तो ये है। अब वो जो उत्तरकाली ध्रुव में अपनापन, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन। अब ऐसे सम्यक दृष्टि जीव की सात तत्व के बारे में क्या होती है स्थिति, और उसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन। सीधी इस बात का, सम्यक दृष्टि के व्यवहार का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन। सम्यक दृष्टि दूसरे को सम्यक दर्शन प्राप्त हो इसके लिए समझाएगा तो कैसे समझाएगा, ये है बात। व्यवहार से ही समझाएगा ना, नौ तत्वों के भेद करके ही समझाएगा ना, इसलिए वो कहते हैं उसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन। तो 12वीं गाथा में ही अंत में एक कह के आए हैं कि यदि निश्चय को नहीं मानोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा और व्यवहार को नहीं मानोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। इस पर भी अपने उदयपुर में बहुत व्याख्यान हुए थे, इसलिए मैंने चर्चा यहाँ नहीं की जाता उस पर, लेकिन मैं एक दो बात क्यों मैं कहता हूँ। तत्व माने वो ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में सत्व, तत्व तो नो है लेकिन तत्व में भी तत्व, समझे ना, तत्व में भी जो मूल चीज है वो, और तीर्थ माने वो नौ तत्वों के माध्यम से उसे समझाने की परंपरा। तीर्थ माने उपदेश की परंपरा, जो 24 तीर्थंकर बोलते हैं ना, सब देश से महावीर तक, और ये संदेशकर वगैरह तीर्थ हैं। असली तीर्थ माने तो उनकी जो दिव्य ध्वनि खिड़ी उसका नाम तीर्थ है, और क्योंकि वो उनका उनको दिव्य ध्वनि का कर्ता कहा जाता है, भले असद्भूत व्यवहार न से सही, इसकी वजह से उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। वे तीर्थंकर भी निश्चय न से नहीं है, सद्भूत व्यवहार न से भी नहीं है, है? बोलो उन्हें तीर्थंकर मानना क्या नहीं मानना, आपको व्यवहार न का नाम सुनते ही मुंह कड़वा हो जाता है, इसलिए थोड़े भगवान महावीर को भी तीर्थंकर नहीं मान सकोगे, क्योंकि तीर्थंकर नाम उनका पड़ा है, वो तीर्थम करोति इति तीर्थंकरा, जो उपदेश की परंपरा को चालू रखे, चालू करें, उसका नाम तीर्थंकर है। क्या तो ये सम्बन्ध संतोष एक ही प्रकार का है, लेकिन वो सम्बन्ध दृष्टि से समझाए तो क्या समझा, वो आया था ना आठवीं गाथा में, चाहे फाड़ फाड़ के देख रहा उन्होंने आत्मा आत्मा कहा तो उन्होंने व्यवहार से समझाया, जो देखे जाने वो आत्मा है ना, तो व्यवहार की प्रतिपादन की परंपरा है, उसका नाम है तीर्थ। तत्व और तीर्थ, तत्व माने वही त्रिकाली जो भगवान आत्मा, तो तत्व का तत्व ये समझते हैं, और ये नौ तत्व हैं, ये इनके द्वारा समझाना ये तीर्थ की प्रवृत्ति है। तो अभी जब उन्होंने कह दिया था ना मुझे वो नहीं चाहिए ये चाहिए, तो हम खूब रस ले ले करके कहते हैं वो नहीं चाहिए फेंक दो हटा दो, मुझे नहीं चाहिए क्यों विनंदी, तो वो अगले ही कलश में उस बात को समेटते हैं थोड़ा। अत शुद्ध नया यत्तम प्रत्यक ज्योति प्रकाशी तत्व, ये सातवा कलश है ना, नव तत्व गतत्व भी यदैकत्वम न मुंचती, वो शुद्ध नयायत्तम शुद्ध नयों के द्वारा जो प्राप्त हुई है, शुद्ध नय के द्वारा जिसका प्रतिपादन हुआ है, और प्रत्येक ज्योति, प्रत्येक ज्योति शब्द जो है समय सार का बहुत ही मार्मिक शब्द है, और इसका अर्थ भी त्रिकाली जो भगवान आत्मा होता है, मैंने इसी समय सार में लिखा है शुरू में ही प्रत्येक ज्योति का अर्थ, तो मंगलाचरण के आस पास वही कहीं होगा देख लेना। प्रत्येक आत्मा नहीं, प्रत्येक ज्योति माने प्रत्येक ज्योति का मतलब वही त्रिकाली से भगवान आत्मा, तो वो प्रत्येक ज्योति चकाश्ति तक वो प्रकाशित हुई शुद्ध नय के द्वारा, वो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा प्रकाशित हुआ है वो ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नौ तत्वों में गया है, नव तत्वम गतत्वेति है ना, और नौ तत्वों में जाने से वो आया, उसने अपने एकत्व को नहीं छोड़ा है। क्या देखिए मैं सितंबरों के यहाँ जाता हूँ तो सितंबर हो जाता कि दिगंबर रहता, मैं हिंदुओं में जाऊं मुसलमानों के यहाँ भी समझाने जाऊं क्यों तो मुसलमान हो जाऊंगा, हमारी दृष्टि कुछ ऐसी हो गई क्या है? है? कि जहाँ जाएगा वही हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं सब जगह जाकर के भी दिगंबर रहूं और दिगंबर होकर के भी सब जगह जा सकूं, ऐसा संभव है कि नहीं बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उन्हें श्वेतांबरों ने क्या पाप किया है, उन्हें क्यों ये तत्व सुनाना क्यों बोलो। मेरे भाई ने पूछा कि साहब आप वहाँ क्यों जाते, मैंने उनसे कहा मैं वहाँ क्यों नहीं जाऊँ, तुम्हारे पास क्यों आऊँ मुझे बताओ, गला पकड़ने वालों के पास आऊँ और माथा नवा करके सुनने वालों के पास नहीं जाऊं, ये कहाँ का न्याय है? हाथ जोड़ के सुनने वाले आप जो कहते हो परम सत्य है क्यों उनके पास तो नहीं जाऊं, और तुम जैसे गला पकड़ने वालों के पास जाऊं, ये कौन सा न्याय है बोलो भैया जी। मैंने कहा उन्हें नहीं सुनाना चाहिए ना, तो गुरुदेव ने श्वेतांबरों को नहीं सुनाया होता तो 50,000 जो श्वेतांबर दिगंबर बने हैं वे कैसे बनते बोलो, ये सब श्वेतांबर ही तो थे, थानक वासी तो थे क्यों, उन्हें सुनाया कि नहीं सुनाया। अरे तुम तत्व तो जानते ही नहीं हो, गुरुदेव को भी नहीं जानते हो, और गुरुदेव के यहाँ देवसी भाई थे वो कौन थे, अभी बताया ना हमारे संजय ने कि हमारे राठौर भी है, अरे तो राजपूत है राठौर तो, लेकिन वो जो थे ना देवसी भाई है ना, कौन से थे क्या थे अगर निजी कास्ट के थे, मुझे ध्यान नहीं रहा कौन सी गुजरात में होती है कास्ट, वो थे। अभी भी एक बौद्ध रहता है ना, क्या नाम है उसका, शंकराचार्य। ऐसे बहुत लोग, खड़ेरी के लोग बहुत अजैन लोग गए ना वहाँ, हाँ हाँ, उनकी जन्मभूमि में। और वहाँ का एक विद्यार्थी हमारा 5 साल पढ़ के गया, विद्वान बन गया, उसने बम्बई में धूम मचा रखी है, हरी कहने। क्या मैंने ये कहाँ से आ गया मेरी समझ में नहीं आता है। ये तुम्हारे पास इतना बढ़िया माल है, क्यों सारा विश्व उसके लिए तरस रहा है, और तुम कहते हो कि उसे उनको बात को मत बताओ, उन्हें मत सुनाओ। तुम्हें सुनना नहीं है, उन्हें सुनाया नहीं। तुम्हें पढ़ना नहीं है, उन्हें पढ़ाया नहीं। क्यों क्यों तुम तो पढ़े पढ़ाए हो। जिन लोगों ने गुरुदेव के दर्शन किए और गुरुदेव के पास में वर्षों तक रहे, स्वाध्याय किया, उनकी बात थोड़ी छोड़ भी नहीं, तो कहा इनकी गिनती के रह गए ना लोग, क्यों। लेकिन वे जिनने हम गुरुदेव के दर्शन ही नहीं किए है ना, वे भी जिनने गुरुदेव का निरंतर समागम किया, उनकी गहराई से पानी में सारा जीवन समर्पित कर दिया, अब उन्हें समझाना चाहते हैं कि ये करो क्या देने, कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, इसका निर्णय अब भी करेंगे। जिन्हें गुरुदेव के दर्शन नहीं किए, एक दिन प्रवचन नहीं सुना, आज भी कितना समझते हैं, क्या कितना स्वाध्याय करते हैं, इसका कौन निर्णय करे। अरे भाई, वो जो प्रत्यक्ष ज्योति है ना, वो 9 तत्वों में जाकर के भी एकत्व को नहीं छोड़ती है, ऐसी ताकत उसमें है। समझे बाबू भाई, ये क्यों उन्हें कहना पड़ा, क्योंकि उन्हें कह दिया मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। कौन नहीं चाहिए, तो व्यवहार में वाला संभव दर्शन, जैसे कोई मुफ्त में मिल रहा हो इसे और कोई देता मिल रहा हो, तो ले ले भैया, ले 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 है ना। तो उसके प्रति जो उपादेय बुद्धि चित्त में हो गई थी, उस उपादेय बुद्धि को नाश करने के लिए उन्होंने इस भाषा में बात की थी कि मैं 9 तत्वों के विकल्पों में नहीं जान जिंदगी भर नहीं उलझा रहा हूँ, मैं 9 तत्व में छिपी हुई जो आत्म ज्योति है, मैं उसमें अपनापन स्थापित करके उसका ज्ञान ध्यान करूं। ख्याल में है ना। मुंडराज भी ऐसा कहते हैं, तो ज्ञानी चौथे अनुष्ठान वाले भी कहते हैं, और मुनिराज भी बाहर आते हैं, और चौथे वाले भी तो आते ही हैं, तो वो नहीं आते हैं, वो थोड़े थोड़े कहलाते होंगे एकाद क्षण को। जो असली भावलिंगी संत होते हैं ना, उसी भव से मोक्ष जाने वाले, जो अंतर्मुहूर्त बाद में छपक्षणी आरोहण करने वाले हैं, जिन्हें 1 घंटे के भीतर केवल ज्ञान होने वाला है, वे भी जितने काल शुद्धोपयोग में रहते हैं, उससे डबल काल शुभोपयोग में रहते हैं। आसान है ना, 24 घंटे का यदि गणित निकालो तो 8 घंटे शुद्ध उपयोग में, 16 घंटा शुभ उपयोग में, और अंतर्मुहूर्त को लगातार शुद्ध उपयोग में, तो केवल ज्ञान हो रहा, केवल ज्ञान हो नहीं रहा, मैं लगातार अंतर्मुहूर्त तक रहे ही नहीं, शुद्ध हो गया ना। कौन वे बाहुबली साल भर तक खड़े रहे, उनकी बात है जी डॉक्टर साहब। ऋषभ देव जो 1 वर्ष तक 6 महीने का उपवास लगे खड़े रहे, उनकी बात है। और प्रूफ क्या है, केवल ज्ञान नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं है लगातार, क्यों। मेरा मतलब ये है कि वो उपादेय नहीं है, ये परम सत्य होने पर भी उसमें वो लोग भी आते हैं, है ना। हमें उसको आना और नहीं आना अलग बात है, और हे उपाधेय का निर्णय करना अलग बात है, समझे ना। और इधर निरंतर अशुभ में तो लग रहे हैं, 24 घंटा दाव पेंट तो लगा रहा है, क्या ना खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, ना पक्ष का ठिकाना, ना अवश का ठिकाना, ना दिन का भेद, ना रात का भेद, क्यों? पंडित भूषण जी की भाषा में कहूँ तो 24 घंटा पुद्गल में खेल रहे हैं, ऐसा बोलते थे उनका पैटर्न शब्द था। तो इसलिए वो कहते हैं भाई घबराओ नहीं, वो नौ तत्व में गई तो नौ तत्व एक तत्व को नहीं छोड़ा उसने। अब जो अगली गाथा आने वाली है जिसका जो उत्थान का कलश है, और उसमें वो नौ तत्व में कैसे गई और कैसे नौ तत्वों में से निकाल के अलग है रही और कैसे अलग की जा सकती है, वो सारी विधि उसमें आने वाली है। उसकी उत्थान का कलश सम्मा दर्शन की परिभाषा, सम्मा दर्शन ही तो प्राप्त करना है ना, मैंने उद्देश्य समय सार का उद्देश्य सम्मा दर्शन की प्राप्ति का ही है। क्यों कि जगह जगह इसमें लगा अत्यंत प्रतिबुद्ध को समझाते हैं, अत्यंत मिथ्या ऋषि को समझाते हैं, देह और जीव को एक मानने वाले को समझाते हैं, लिखा क्या नहीं लिखा। तो मैंने तो सन 56 समझते हैं क्या 56 मैं एक पूजा लिखी थी देवसाज गुरु की, तो उसमें ये लिखा था कि दर्शन दाता देव है आगम जन्म ज्ञान तो गुरु चरित्र की कहानी है, ये तो देवसाज गुरु था और इसमें एक ऐसा ये भी था हाँ समय सार जिन देव है जिन प्रवचन जिन वाणी निर्ग्रंथ गुरु उस वक्त लिखा था, मैंने समय सार जिन देव है देवना नदी इससे मिलेगी, मैंने सम्मान दर्शन का निमित्त था जी। और उनकी जो प्रवचन हुए थे वो जिनवाणी है, मान वो शास्त्र है, और नियम सार मैंने उनके बताए नियमों पर जो चले क्या वो निर्ग्रंथ गुरु है, समय सार जिन देव है जिन प्रवचन जिन वाणी नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करे करण की हानि। ये 56 में लिखी थी मैंने ये पूजा, और ऐसे 57 में तो मैंने पूज गुरुदेव श्री को भेंट की थी चांदखेड़ी में, तो उसमें मैंने ऐसा लिखा था कि उन पूज गुरुदेव श्री के कर कमलों में सादर समर्पित जिन्होंने इस कलिकाल में हम जैसे पामर प्राणियों को क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप समझा कर अनंत उपकार किया, ऐसा लिखा था क्या? तो वो गुरुदेव को दी मैंने, तो वो उनने पढ़ा चांदखेड़ी में, तो बोले तुम क्रमबद्ध पर्याय जानते हो? हाँ साहब जानते, तो सोनगढ़ आना, अब वहाँ बात करेंगे, सोनगढ़ आना जरूर आएंगे साहब। फिर उसके बाद हम वहाँ से कोटा गए, और कोटा में गुरुदेव की सभा में दो आदमी के व्याख्यान हुए, एक मेरा एक गेंदालाल जी बूंदी वालों में, उस वक्त तब मुझे आज भी याद है पूरा व्याख्यान जो मैंने उस वक्त बोला था। कितने साल हो गए? 57-58 साल हो गए। तो मैंने एक तो ये बोला था कि ये जो गोरे भूरे चेहरे वाले दिख रहे हैं ये कांजी स्वामी नहीं है, ये नहीं है कांजी स्वामी, कांजी स्वामी तो वो है जो वो किस्ताल लगा था और किताब में रखी थी। क्या 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 कांजी स्वामी तो वो है, असली कांजी स्वामी तो वो है, एक तो ये बात को बोला था, और दूसरा मैंने अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोग की परिभाषा समझाई थी, तो उसके लिए मेरे बहुत देश में हर जगह मांग रही कि वो हमको अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोग की परिभाषा समझनी है जो आपने वहां पर गुरुदेव के सामने कही थी।
वो यहाँ भी समझा
तो समय दर्शन का जो विषय है इस समय सार समय दर्शन की प्राप्ति का निमित्त सार्थ है ना। तो समय दर्शन के लिए वो कहते हैं तो एकत्व में वो जो ज्योति है उस ज्योति को प्रतिपादन तो व्यवहार में करेगा, जैसे मैंने बोला ना कि वहां तो ये कहा था कि वो हमें नहीं चाहिए नौ तत्व वाली, हम क्या समझते हैं व्यवहार से नौ तत्व और निश्चय से एक तत्व, ठीक है यहाँ अभी तो पक्का है ना, अब अगली कथा पढ़ के देखो जरा। भूयत्रेणा विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावन से आश्र संवर निश्चर बंधो मोको सम। अब निश्चय ऐसे जाने भी नौ तत्व, अब तुम तो कहते निश्चय ऐसे नौ तत्व जाने ही नहीं जाते हैं। वो देख प्रकार भगवान आत्मा को ग्रहण करता है, देखा कि नहीं अगली गैतंती में। अरे भैया निश्चय नहीं जी कितने होते हैं, व्यवहार नहीं जी कितने होते हैं, समझिए ना, व्यवहार नहीं जी चार प्रकार के होते हैं, निश्चय नहीं जी चार प्रकार के होते हैं। अभी निश्चय में कब व्यवहार बन जाते हैं, कब व्यवहार निश्चय बन जाता है, बहुत डिटेल है, पूरा नए चक्र पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए कहते देखो कि भूयत्थे नामी गदा भूतास नय के द्वारा जाने हुए। ये भूतास क्या होता है, तो निश्चय है मैंने भूतार्थ, तो समझ दो ना, निश्चय नहीं भूतार्थम अभूतार्थम वर्णयंती व्यवहारम वर्णयंती भूतार्थम, ऐसा आता है। यहाँ भूयत्थे नामी तो मैंने भूतार्थ का अर्थ किया है, इसे पढ़ना शांति से। भूत और अर्थ, भूत माने गंतर देव नहीं, और भूत माने भूतकाल वाले भी नहीं, भूत भविष्य वर्तमान वाला भूत भी नहीं। तत्वा सूत्र में भूत शब्द आता है, भूत वृत्तनुकंपादान आता ना, तो वहाँ भूत माने लिखा है समस्त प्राणी, और वृत्ति माने अनुवृत्ति दूसरे को नुकसान से ऊपर वाले। तो भूत माने प्राणियों पर अनुकंपा और वृत्तियों पर वात्सल्य भाव की बनती है ना। तो यहाँ भूत माने है जो है, जो वास्तव में है उसका नाम भूत, भू धातु होने के अर्थ में है ना, भगवती होता होती बनते। भूत माने टू बी है, और अर्थ माने पदार्थ, जो पदार्थ है उसका नाम भूतार्थ है, जो नहीं है उसका नाम अभूतार्थ है। मतलब वस्तु तो है नहीं, तो बातें कोरी कोरी बातें की जा रही, जैसी कहा जा रहा वैसी वस्तु नहीं है तो उसका नाम अभूतार्थ है। जैसा कहा जा रहा वैसी वस्तु नहीं है, मिट्टी का घड़ा नहीं है, एक ही का घड़ा नहीं है, मिट्टी का है इसलिए वो अभूतार्थ है, और मिट्टी का है इसलिए वो भूतार्थ है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक शब्द आता है रंजन जी, प्रयोजन भूत, भूतार्थ में क्या फर्क है, अर्थ माने होता है प्रयोजन, ये तो आप जानते हैं कि नहीं, और भूत तो है ही, तो भूत अर्थ भूत प्रयोजन भूत, भूत तो दोनों में ही है, उसमें भी भूत है इसमें भी भूत है, पर उसमें अर्थ है पर उसमें प्रयोजन है, और अर्थ माने प्रयोजन होता ही है। ये आत्मा तीर्थ जैसे बना ना दिल्ली में, जब इसके नाम की समस्या आई कि नाम क्या रखें नाम क्या रखें, तो मेरी ऐसी आदत है आत्मार्थी भाई लिखता था मेरे, मोक्ष भाई लेकिन मोक्ष आत्मार्थी ज्यादा बोलता था मैं, तो लोगों ने मेरे से पूछा कि साहब आत्मा में आत्मार्थी रखो, मोक्ष तो बहुत हो गए। तो उन्होंने कहा अर्थ क्या, देखो समझना दोनों शब्दों में महान शब्द कौन है, तो भैया जी मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा है ना, तो मोक्ष और इच्छा ये दोनों मिलकर बना मुमुक्षु, और आत्मा और अर्थ ये दोनों मिलकर बना आत्मार्थ। अब मोक्ष बड़ा है कि आत्मा, क्यों, और इच्छा बड़ी है कि प्रयोजन, अर्थ माने प्रयोजन, क्यों, ये तो लिखा है वहाँ कि न मोक्षो भी मोक्षताम, मोक्षों को मोक्ष चाहने पर भी मोक्ष नहीं मिलेगा, लिखा क्या नहीं लिखा, लेकिन आत्मार्थियों को आत्मा नहीं मिलेगा ये कहीं लिखा हो तो बता। ये आत्मार्थी किस में बताऊंगा।
क्या
मैंने आत्मार्थी शब्द जो है वो ज्यादा महान है मेरे कहने का अर्थ है, क्योंकि उसमें आत्मा मोक्ष तो पर्याय है और आत्मा द्रव्य है, जो त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा है कि जिसके आश्रय से मोक्ष प्रकट होता है ना, और इच्छा तो खोटी चीज है, किसी की भी क्यों नहीं हो, और प्रयोजन हमारा प्रयोजन क्या है, आत्मार्थ कहते हैं ना, अपने आत्मा का कल्याण करना हमारा प्रयोजन है, तो वो कोई आत्मा ने द्रव्य का प्रयोजन है, हमारा पर्याय प्रयोजन नहीं है। तो वो कहते हैं देखो भूत भूयत्थे नावि गदा, कि भूतार्थ नय से जाने हुए नौ तत्व, तो भूतार्थ नय से नौ तत्वों को जानेंगे तो वो आत्मा ही जानने में आएगा। मैंने कल थोड़ा संकेत किया था कि इन नौ तत्वों को कैसे समेटना, यानी एक आत्मा में कैसे गर्भित करना, याद है? हाँ, दो दो में माना, क्योंकि जब तक इसको टुकड़े नहीं करोगे तब तक इनको समाप्त नहीं हो सकते, भेद डाला, भेद की नीति है, है? आश्रव का द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव, चेतन आश्रव अचेतन आश्रव, ये शब्द ज्यादा अच्छे हैं इस वक्त, है ना, चेतन बंध अचेतन बंध, चेतन संबर अचेतन संबर, चेतन नजरा अचेतन नजरा, चेतन मोक्ष अचेतन मोक्ष, और चेतन वाले को चेतन में समा दो और नचेतन वाले को चेतन में समा दो, तो साथ के दो रह जाएंगे, और एक ही चीज के दो पहलू हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, पॉजिटिव जीव और नेगेटिव में उसी को अजीब कहते हैं, दो चीजें कहा है कहते, ये जीव है इसके अलावा और कोई जीव नहीं है, यानी अजीब है, तो एक में समेट गया ना, नौ तत्व तो एक में समेट गया तो निश्चय नहीं का विषय हो गया, अब इसी को फैला दो क्या, तो नौ तत्व तो खड़े हो जाएंगे, तो इसलिए कहते भूतार्थ नैसे जाने हुए नौ तत्व, इसका मतलब नौ तत्वों को जान कर और उनमें से एक आत्मा निकाल लेना, सार की वस्तु निकाल लेना और उसको छोड़ देना। देखो ये कहते ना ये जो सब आंवला खाया करे, आंवला बहुत अच्छा होता है, हम तो बहुत खा के देखा कि ठंडा लगता है, मजा नहीं आता, ये अच्छा होता है, उसमें विटामिन सी बहुत होता है और लोहा आयरन भी होता है, वो बहुत अच्छा होता है, तो ये जो ऐसे लोग है ना ये आंवला नहीं खाते, ये विटामिन सी और आयरन खाते है, इसलिए उन्हें कसाया नहीं लगता। चाहे दाल खाते हो, दाल में प्रोटीन होता है 22%, ये लोग प्रोटीन खाते हैं, दाल नहीं खाते हैं। सोच के तो वही वही तत्व को निकालना है, वो खाते तो बेबी दाल ही है, खाएंगे तो बेबी आंवला ही, समझो खाएंगे तो वही चीजें, जैसे बैलेंस डाइट बोलते हैं, जैसे बाजार से आयरन की गोलियां लेके और विटामिन सी की गोलियां लेके वो खा के आज तक कोई जिंदा नहीं रहा, क्यों, तो खाने के साथ वो खाई जाए और खाने में हो वो तो बहुत ही बढ़िया है, यही है ना, तो वो उसका एसेंस तत्व है, क्या आंवले का तत्व क्या है, तो कहेंगे विटामिन सी, समझ गया, ये मेरे कहने का मतलब है, तो ऐसे जो नौ तत्व है, माने नौ तत्व माने सारी दुनिया समझ लो ना, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष, तो सारी पर्याय आ गई है और ये सारे द्रव्य आ गए, तो इन सब में से एक अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा छाटना, भेद करे तो घबराना नहीं, भेद करने से, भेद करने से वो भगवान आत्मा उसमें रहेगा, क्यों, अब इन डॉक्टरों से पूछो तो वो इसको सब्जी को ज्यादा पकाना नहीं, ऐसा नहीं करना, वो सारे विटामिन खत्म हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, आंवले में ये ताकत है कि तुम चाहे उबाल लो, चाहे फेंक लो, चाहे कूट लो, चाहे पीट लो, उससे खत्म नहीं होते, क्यों, वो वहाँ के हमारे हैगा, वो उसमें से कहीं नहीं जाएगा, कल में ना और सब्जियों में से निकल जाएंगे, जल जाएंगे, फूट जाएंगे, ये हो जाएगा। ऐसे ही कहते हैं कि जो एकत्व है ना तेरा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। नौ तत्व में जा तो उसने एकत्व को बना छोड़ेगा। निन्न तत्व के तत्व भी एकत्व ने मुंसती, नौ तत्व में जाकर के भी जो एकत्व को नहीं छोड़ता है, ऐसा भगवान आत्मा वो तेरा जानना है। अब उसको कहते हैं कि इसका नाम भूतार्थ में से नौ तत्वों को जानना है। इसको इसका नाम रोटी दाल चावल नहीं है, इसका नाम प्रॉपर डाइट है, बैलेंस डाइट है। समझिए ना कि हमारे जो शरीर के लिए चाहिए वो सब चीजें मिलती है। एक एक हमारे यहाँ शाकाहार का मेडिकल कॉलेज ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया, मेडिकल कॉलेज ने किया था जयपुर के में, और उसके अध्यक्ष थे जो आजकल ये मध्य प्रदेश के हुए हैं ना राज्यपाल बलराम जाखर, उस वक्त लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो उनकी अध्यक्षता में वो किया था। और उसमें मैं भी, मुझे भी बुलाया था शाकाहार पे बोलने के लिए, और बड़ा बहुत बड़ा सेमिनार था, डॉक्टर सब लोग थे। तो ये डॉक्टर थे वहाँ ललित कोठारी, डीसी कोठारी के लड़के, डीसी कोठारी का नाम तो सुना होगा ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष वैज्ञानिक थे, उनके लड़के हैं, वो अभी भी होंगे ललित कोठारी। तो उन्होंने बोला कि साहब शाकाहार में ये डिफेक्ट है कि यदि उसे प्रॉपर डाइट बनानी हो तो 25 चीजें इकट्ठी करनी पड़ती है, और मांसाहार में वो सब चीजें एक साथ मिल जाए। क्या उनने अपने भाषण में कहा, डॉक्टर थे, कन्वीनर थे, और डीसी कोठारी के लड़के, डीसी कोठारी से मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी, है ना, वे कम से कम 10 दफे मेरे घर आए बिना बुलाए, बिना सूचना के, डीसी कोठारी। हाँ सीतामर जैन थे, लेकिन बहुत सात्विक आदमी थे, बहुत सात्विक आदमी थे। तो वो मेरा भाषण उसके बाद होना था, तो मैंने उसमें कहा जो आपको कहना चाहता हूँ, बहुत मारने के बाद मैंने कहा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि ये जो शाकाहार सम्मेलन हो रहा है, ये इसकी रिसर्च हो रही है कि कौन भोजन अच्छा है शाकाहार के मांसाहार, फिर तो इसका नाम ऐसा होना चाहिए था। क्यों कि जो कौन, मतलब ये रिसर्च की नहीं है मीटिंग, ये मीटिंग शाकाहार के प्रोत्साहन के लिए है। हाँ, कि शाकाहार के गुण बताए जाएं, शाकाहार के जनता में कैसे प्रचार हो, इस पर विचार किया जाए, मंथन किया जाए, जनता तक लोगों से अलग अलग कैसे हम शाकाहार को प्रोत्साहित करें मांसाहार का नहीं, इसके लिए मैं समझता हूँ ये मीटिंग बुलाई गई है। ये मीटिंग कौन से आहार में अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, इसके लिए ये मीटिंग नहीं बुलाई है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर कोठारी ने कहा कि उसमें सब चीजें वो इकट्ठी मिल जाती हैं, क्या उसमें कैंसर भी हो सकता है, उसे वो सब बीमारियां भी हो सकती हैं, और हम आदमी में तो आदमी इलाज कराता रहता है, उसको कौन इलाज करने वाला है। उस मांस में, वो पशु में जितनी बीमारियां वो भी सब मिल जाती है इकट्ठी। ये मेरे का हमारा दुर्भाग्य नहीं है कि हमें 25 चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, ये परम सौभाग्य है कि हमारा भोजन में विविधता आ जाती है। हमारे पूर्वजों ने क्या किया, चटनी रखी साथ में, फिर मसाले रखे, फिर पापड़ रखा, सारे चीजें और बदल बदल के, क्यों तो उसमें ये अच्छा है कि हम पलट पलट के कोई चीज खाएं, एक ही चीज रोजी में खाते रहे, क्यों। और यदि उसमें सारा प्रॉपर डाइट है तो अकेला मांसाहार करके कोई जिंदा रहा हो तो बताओ, आज तक कोई आदमी ऐसा बताओ विश्व में कि जो अकेला मांसाहार करता हो, जिसने शाकाहार कभी किया ही नहीं हो, और ऐसे शाकाहारी लाखों मिल जाएंगे। मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि 25 चीजें मिलाने पड़ती हमें जब वो हमारी प्रॉपर डाइट बनती है, इससे विविधता आ जाती है हमारे भोजन में, ख्याल में है ना। और एक बात मैंने कहता हूँ कि शाकाहार के लिए डॉक्टरों की ये ड्यूटी है कि वो ऐसे फार्मूले निकाले यहाँ डिब्बा बंद भोजन बनने लग गया ना, कि जो प्रॉपर डाइट और सस्ती सस्ती शाकाहार से वो बना के तैयार करके दें। विद्वानों का काम है, जो संतों का काम है, जिनकी जनता पर पकड़ है, वे उसे जनता में पहुंचाएं। जो उद्योगपतियों का काम है कि वो इस तरह की चीजें तैयार करें, जैसे बिस्कुट बना ऐसी थी, क्योंकि वो तो आज कोई बिस्कुट तो नहीं रोक सकते आप, ऐसी चीजें बनाए और कार्यकर्ताओं का काम है कि जन जन तक पहुंचाए। इसके लिए शाकाहार होना चाहिए। हमें उसमें यदि कोई कमी है आपकी दृष्टि में, तो उसको कैसे दूर किया जाए और उसको कैसे प्रॉपर बनाया जाए, हम इस पर गंभीरता से बिता के उसने आगे माफी मांगी मेरी सभा मेरे से, क्योंकि आप सब ठीक सही क्या कर, मेरी बड़ी गलती हो गई, मेरे से माफी कैसे। मैं कह रहा हूँ नौ तत्व में तुम्हारी आत्मज्योति चलेगी तो विविधता आ गई, तुम्हें क्या दिक्कत है? अकेला आत्मा आत्मा कब तक रटते रहोगे? वे लोग भी छठ में सात में गुणस्थान वाले भी अधिक काल तक सुख काल में रहते, क्योंकि सुख में अधिक रहते होंगे तत्व ही चिंतन तो करते होंगे। एक कह दो, समझ में आया क्या कह रहा
हूँ?
मेरा कहने का मतलब है क्या करते होंगे आप बताइए, भेद से समझाते होंगे कि अभेद में? अभेद में तो वो अनुभव का काल अभेद का काल है, और जो समझने समझाने का काल है वो तो भेद का काल है, और ज्यादा उसमें रहे तो वे मिथ्या दृष्टि हो गए क्या, कि मोक्ष मार्ग से चित हो गए क्या, फिर मोक्ष मार्ग ही है कि नहीं है? तो नौ तत्व में जाने से एकत्व छूट नहीं जाता है, ये कहना चाहता हूँ। नव तत्व गतत्व थी यदि तत्व ने मुंशी, नौ तत्व में ही जाकर के वो एकत्व छूट नहीं जाता है।
इससे कहीं सुख का उपाधि बना नहीं हो रहा है?
हाँ, क्या है सुख का उपाधि बना?
का स्वरूप है,
जो वस्तु स्थिति है उसका ज्ञान करा रहे हैं। तो मैंने पहले ही कह दिया कि इसमें सुपाधे की शुभ की उपाधि बुद्धि आती थी, इसलिए दोनों डंके की चोट के दिया कि हमें नहीं चाहिए। वो तो पहले कह चुके। देखो ऑपरेशन करते ना तो सारी अंदर से जो चीज होती है गंदगी होती है वो निकाल देते हैं। फिर वो गंदगी तो निकाल भी जरूरी है, लेकिन इधर वो बीमारी ठीक नहीं होगी तो फिर वैसे ही छोड़ देना। कैसे टाके लगाना, मलम पट्टी करना, फिर एंटीबायोटिक देना, आठ दिन तक संभालना, डॉक्टर साहब क्या ये डॉक्टरी है कि नहीं है? किसी लिए निकाल के फेंक देना वो ऑपरेशन तो 8 घंटा और ये तीमारदारी 8 दिन। क्यों? और इलाज दोनों मिलाकर के है कि एक है इलाज? बोलिए, वैसे ही छोड़ दें तो क्या हो जाएगा? तो ऑपरेशन करके काट दिया सुख भाव को, अब उसकी अब उसको टांगे माके तो लगा दो, मलम पट्टी तो करने दो। वस्तु स्थिति है, कोई ये ऐसा नहीं कि किसी को सुनने के खुश करने के लिए बात कही जा रही है किसी के लिए। वस्तु स्थिति है ना, वो संत जो अंतर्मूर्ति में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, मोक्ष जाने वाले हैं, वो भी इस स्थिति में रहते। नौ तत्व में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? नौ तत्व के विकल्प में जाते कि नौ तत्व भगवान की दिव्य ध्वनि में से आए कि नहीं आए? उस दिव्य ध्वनि के कर्ता भगवान असुर व्यवहार में से सही, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि है कि नहीं है? यदि इस नए को नहीं मानोगे तो ये अप्रमाणिक हो जाएगी सब साथ, क्योंकि ये तो उनकी वजह से प्रमाणिक है। बाकी समझ में आ गए, एक दिव्य ध्वनि है, ये बहुत समय सार है, ये कुंड कुंड आचार्य ने लिखा इसलिए प्रमाणिक है ना, ये कांजी स्वामी के प्रवचन है इसलिए प्रमाणिक है ना, अभी कौन से नए से है? अभी तो बराबर हम तो अभी असदूत में भी कहाँ डालते हैं, अभी तो हमने शुरू किया है डालना, अभी हम लोग धुनाई करते हैं, ये तो चढ़ की क्रिया है। और कुंड को अमृत चंद्र तो कहते हैं मेरा कुछ काम नहीं है, अमृत चंद्र शुरू है क्या है? क्या कागज मसी मसी अक्षर आकार और लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। अरे उनने इतना तो स्वीकार किया कि ज्ञान और राग को मेरो मिलो, कर्णो धन तन को मिलो, कागज मसी अक्षर आकार लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। लेकिन भाई साहब ये दिव्य ध्वनि भगवान अरहंत की है कि नहीं, बोलो? वो और नहीं है तो इसकी प्रमाणिकता का आधार क्या? बोलो आगम की परिभाषा क्या है? पढ़ाते परीक्षा में पढ़ाते हो क्या? नहीं है ना? आगे सब आत्म ज्ञान निबंधनम अर्थक ज्ञानम आगमा आपके वचन है निबंधन माने कारण जिसमें ऐसा पदार्थों का ज्ञान उसका नाम है आगम है ना? तो आपके वचन उसमें है कारण के नहीं प्रमाणिकता नहीं रहेगी। अब वो कौन से नए से है? क्यों? क्योंकि एक संयोग का ज्ञान कराता है वो कौन सा नए होता है? असदभूत है ना। और दूर के संयोग का ज्ञान करा वो कौन होता है? उपचर। तो उपचर तो सदगुरु माने सबसे रद्दी है। क्यों है क्या नहीं? तो एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव का कर्ता क्या है? अरे अपने शरीर का कर्ता कह दो तो वो अनुपचरित हो जाएगा है। मैंने ये बिल्डिंग बना दी, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, देश का समाज का ख्याल में है ना। गांधी जी ने भारत को आजाद किया, ये सब उस अवचर तस्वूर व्यवहार में के हैं। और तीर्थंकर की ये वाणी है ये भी है, और कुंद कुंद की ये समय सार है ये भी इसी नए से है, और पंडित हुकुमचंद भी इसी नए से बोल रहा है। ये नए को नहीं मानेंगे तो वाणी की प्रमाणिकता खत्म हो जाएगी। यदि प्रमाणिकता यदि तुमको कायम रखनी है तो इस नए को भी कोई ना कोई स्थान तो तुम्हें देना पड़ेगा। और तुम देने वाले कौन होते हो जिन वाणी में उसे स्थान प्राप्त है? भाई साहब है जब सब में ज्ञान नयों की चर्चा चलती है तब उसके भेदों में उसका नाम आता है। वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री में है, ऐसा नहीं तुम्हें देना है कि तुम्हें करना है। तो गदा भूतार्थ में ऐसे जाने होंगे जीव अजीव आश्रम बंद जो भी है ना, वे नौ तत्व हैं। वो मोक्ष सम्य दर्शन है, वही सम्य दर्शन है। देखो कैसा लिखा है। अभी मैं ये कहता हूँ इस गाथा की विशेषता के इसमें एक क्रम दिया तत्वों का, तत्व सूत्र में दूसरा क्रम है। वो कहते दोनों गुरु शिष्य थे, इसमें है जीव अजीव अस्त्र बंध संबंध मोक्ष, और इसमें है देखो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संबंध निद्रा बंध मोक्ष। एक क्रम के कुछ लोग ऐसा जवाब देते हैं इसका कि गाथा है ना, तो गाथा में आगे पीछे करना पड़ता है, छंद नहीं बनता है। लेकिन एक ने इसमें ने खुद लिखा है कि छंदानुरोध से दिया गया क्रम नहीं है। क्या? क्योंकि उन्होंने इसी क्रम से आगे अधिकार रखे हैं। कर्ता क्रम और सर्वसिद्धि छोड़ दो, क्योंकि उनके तो इसमें नाम है, तत्वों में नाम नहीं है। तो जीव अजीव अधिकार, फिर पुण्य पाप अधिकार, आश्रव संवर। अब आश्रव के बाद संवर आ गया है, फिर निद्रा, फिर मोक्ष, फिर बंद, फिर मोक्ष। तो उन्होंने जोड़े बनाए। क्यों है? हाँ, जोड़े ही होते हैं। दो पहलवान आपस में लड़ते हैं तो वो जोड़ी कहलाती है, नहीं कहलाती है? और पति पत्नी की जोड़ी कहलाती है तो बेगा कम लड़ते हैं। है? जोड़े बने क्योंकि ये नाटक के रूप में उन्होंने लिखा। अमृतचंद्र ने इसको सबसे पहले ये प्रस्तुत किया कि समय सार नाटक है ना, नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। और नाटक में तो स्टेज पे जो आएंगे तो जोड़े से ही आएंगे, तो पति पत्नी आए तो खलनायक और खलनायक आए, अकेले तो होता नहीं है। तो उन्होंने जोड़े बनाए, प्रद्वंदियों के जोड़े बनाए, और उस तरीके से इसको इसमें प्रस्तुत किया। तो जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होती है तो मैं पहले ये बोलता था कि ये हमारा पंच कल्याणक जैन दशम का रामलीला है, जैन दशम का सबसे बड़ा नाटक है। तो सब लोगों ने एतराज करना शुरू कर दिया कि हमारे तुम इस महान पंचकल्याण को तुमने नाटक कह दिया। अब उन्होंने नाटक किसे कहते हैं? उन्होंने क्या समझा? नाटक मत कर, सब समझता हूँ। अब वो नाटक सबसे परिचित थे वो लोग, बहुत नाटक हो गया तेरा, अब नहीं चलेगी। तो बहानेबाजी करते हैं, कुछ तबीयत खराब हो गई, सर में दर्द है, ये नाटक मत कर, चल उठो काम कर पढ़ो। तो उस नाटक शब्द से वो नाटक शब्द बदनाम हो गया और उन्हें समझ प्रिंस कल्याणा को नाटक कह रहे हैं। अरे मैंने कहा पहले तो नाटक शब्द की इज्जत बढ़ाओ कि समय सार नाटक है। बोलो हमने चंद्र लिखा साहब, लिखा क्या लिखा, तो समय सार नाटक है। अब बोलो समय सार नाटक है कि नहीं है, तो फिर अब समय सार नाटक शब्द की कीमत करो क्या है। अब हमने पंच कल्याण को नाटक कहा तो क्या पंच कल्याण समय सार से भी बड़ा है? फिर खूब कहा प्रयोजनों में, अपनी किताब में भी लिखा और धीरे धीरे उसकी इज्जत बढ़ गई है नाटक शब्द की। और मैंने कहा है क्या स्टेज पे आपके आ रहे हो, धर्मेंद्र आ रहे आज, ये क्या है नाटक में क्या होता है कि जो असली नहीं है और जो दूसरा आदमी उसका भेद बना के आता है उसी का नाम तो नाटक है, तो इसमें ये क्या हो रहा है? अरे वो तो असली बढ़िया नाटक है, ये तो सबसे ज्यादा नकली नाटक है। वो 5 लाख रुपए दे और वो जाकर के एक पर्चा लिए फिरता है, पैसा हटा देता है, मुश्किल से पढ़ पढ़ के बोलता है, अभिनय करना भी नहीं जानते ये तो। इसे तो अमिताभ बच्चन को सौदर्भ बना देते तो मजा आ जाता समझ में। आप स्टेज पे यही कह रहे ना, ये पात्र पात्र अलग है, उसका पाठ करने वाले अलग है, है ना? देख उसी का नाम तो नाटक है। और फिर मैंने कह दिया सोचा वहाँ पर सिकंदराबाद में, हैदराबाद में पंडित कल्याण हुआ था, तो पंडित नाथूलाल जी थे, वो गुलाब चंद जी थे और सारी अपने महासमिति वाले थे और साधु शांति प्रसाद थे। और मैंने कहा कि जैनियों की रामलीला है तो वो हल्ला हो गया, तो गुलाब चंद प्रसाद ने बहुत हल्ला मचाया, हमारी जो रामलीला कह दिया। रामलीला कोई खोटी चीज है क्या? रामलीला भी ऐसी बदनाम हुई है नाटक जैसी। मैंने कहा भाई कि ये राम का जो चरित्र है वो जगत के सामने इसलिए प्रस्तुत करते हैं रामलीला के माध्यम से हर साल कि जगत राम जैसा जीवन बनाए अपना, और राम के चरित्र में वो सब तत्व विद्यमान है जो हमें एक आदर्श जीवन जीने के लिए उपदेश देते हैं। तो वो वहाँ राम, उनका राम भगवान है क्या? नहीं, उनके भगवान है ना, और उन्होंने उसको नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। रामलीला तो नाटक है क्या? नहीं, और हमारे भी आदिनाथ भगवान है, तो हमने भगवान से भगवान की उपमा दी है, और वो बहुमत के भगवान है। क्यों? हमने कोई पंच कल्याणक का ये अपमान नहीं किया, पंच कल्याणक को रामलीला कहा तो भी अपमान नहीं किया, पंच कल्याण को नाटक कहा तो भी अपमान नहीं किया, और सब कहते ही रहे, हम बोलते रहे, और हमने किताब में भी लिखा और 1 लाख किताबें वो छपके पहुंच गई, उसमें लिखा है। अब कोई छप चुप है, कोई कुछ नहीं बोलता। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये जो वस्तु का स्वरूप है, ये जो मेडिकल कॉलेज वाले हैं, यदि हायर सेकेंडरी को सेकेंडरी की जो पढ़ते हैं लड़के ना, इन्हें हे दृष्टि से, इन स्कूलों को हे दृष्टि से देखें, और वो हायर सेकेंडरी का मास्टर है, अरे मास्टर है हायर सेकेंडरी में, मैं प्रोफेसर क्यों? अरे साहब ये तुम्हारे शत्रु नहीं है, ये तुम्हारे फाउंडर हैं, ये उतना तो अच्छी पढ़ाई पढ़ा करके वहां से नहीं आएंगे तो तुम्हें समझाओगे कि नहीं? बोलो, इन्हें शत्रु मत मानो, तो ये व्यवहार में फाउंडर है, नहीं। वो उससे समझा, ABC शुरू करी, 7 तत्व से, 9 से, 6 से, तुम क्या पढ़ाते हो यहाँ पर? 9 तत्व पढ़ा, 7 तत्व पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते हो? तरकारी फिर अकेला देश में लब्धी है भाई वो, और जो कर्ण लब्धी है कौन? शुद्ध निश्चय है, कर्ण लब्धि का काम है, और वो देशना लब्धि का काम है। पहले कौन सी लब्धि होती है? देशना लब्धि के बिना कर्ण लब्धि होती है? तो वो शत्रु हुई कि उसकी सहायक हुई, फाउंडर हुई, मित्र हुई, क्या हुई? इसलिए तो आगे लिखा है समय सार में कि दोनों नयों की मैत्री है, ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री, इस शब्द का प्रयोग किया है। तो जो आदमी जो कौन सा 7वां 6वां कलश में जो थोड़ा चीड़फाड़ ऑपरेशन किया था, 7वें कलश में उसके टांके लगा के मलम पट्टी की है, चल रहा है ना। और फिर उन्होंने कहा कि भूतार्थ, मैंने तो ये कहा था भूतार्थ नए का दिशा एक आत्मा चाहिए हमें और ये भेद नहीं चाहिए, और फिर कह रहे भूतार्थ न उसी निश्चय में से नौ तत्व जानो। इतनी जल्दी मत करो, एकदम उसको ज्यादा गालियां मत दो, अगली गाथा में उसकी प्रशंसा अभिनंदन पत्र निकल आया तो क्यों भूयत्रेणा गदा जीवा जीवाय पुण्य पावन से असव संबंध निर्जर बंधु मुखो सम्मतम। इस गाथा का अर्थ अपन ने किया, और टीका का अर्थ अगले व्याख्यान।